आदर। सबसे कठिन बात है, मनुष्य विवेक विचार के द्वारा जिस बात को ठीक समझता है उसके अनुसार चेष्टा नहीं करता। इसमें कारण क्या है? विश्वास की कमी है। बात ठीक है, बुद्धि से समझ में आती है, युक्तियों से भी समझ में आती है, पर वो स्वीकार इसलिए नहीं करता कि वो देखता है कि इसके स्वीकार करने से आगे जाने क्या होगा। उसको विश्वास नहीं है। वास्तव में तो जो अनुभव हो आगे बढ़े और उसको स्वीकार करता जाए, और जो अनुभव हो त्यों साधन बढ़ाता जाए। जिस विषय में विश्वास हो जाता है उसके करने में फिर कमी नहीं आती। हमारे घर में किसी कमरे में खूब सोने के आभूषण हैं और उसी कमरे में सांप भी है, तो जब तक सांप को हम बाहर नहीं निकाल लेंगे तब तक आभूषण लेने के लिए कमरे में नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने को मालूम है कि वहां खतरा है, विश्वास है, खतरा है। उस समय सोने की प्रियता उस खतरे में दब जाती है। ऐसे ही इस संसार को ही चकाचौंध में हम लोग यदि इसको काल रूपी सर्प से ग्रस्ता हुआ देख लेंगे तो फंसेंगे नहीं। सोना लेने कौन जाए, वहां सांप पड़ा है, क्या काम आएगा सोना? सांप खा जाएगा। कमरे में सोना का आभूषण भी है और सांप भी वहां बैठा है, तो आभूषण लेने कौन जाएगा? और आभूषण काम क्या आएंगे? सांप खा जाएगा, मर जाएंगे, तो आभूषण क्या काम के? ऐसे ही संसार को काल रूपी सांप के अंदर ग्रस्ता हुआ देखे और यहां के विषयों को जो कि वो सोने के आभूषण के समान चमकीला और अच्छा मानता है, वो इस काल को ध्यान में रखते ही बच जाएगा। तो विश्वास हो गया ना कि सांप पैर खा जाएगा और हम मर जाएंगे, ऐसे ही हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि पारमार्थिक उन्नति नहीं की तो आगे खतरे की कमी नहीं है, मारे जाएंगे, नरकों में मारे जाएंगे। सत्संग में शास्त्रों में जैसी बात सुनी है और अपने को जो भजन ध्यान से मालूम हुई है पर मन में जची नहीं कि ये बात ठीक है, इसी कारण से बाधा आ रही है। ध्रुव जी को भगवान मिल गए ये बात शास्त्रों में आती है, परंतु अपने लोगों के हृदय में विश्वास की कमी है, इस कारण से तत्परता नहीं आती। नहीं तो तत्परता आनी चाहिए कि एक छोटे से बच्चे, 5 वर्ष वाले के बच्चे को मिल गए तो हमको क्यों नहीं मिलते? ये सोए शास्त्र में लिखी है, अपने को थोड़ी मिलेंगे। पहली बात तो भगवान पर ही विश्वास नहीं, दूसरी बात है भगवान मिलते हैं यही विश्वास नहीं, और तीसरी बात है अपने को मिल जाएंगे ये तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं। बहुत मार्के की बात है। पहला तो है कि भगवान है इस बात पर विश्वास करो, दूसरी बात है भगवान मिलते हैं इस बात पर विश्वास करो, तीसरी बात है कि भगवान मेरे को मिल सकते हैं ऐसा विश्वास हो। ऐसा विश्वास नहीं होता तो साधन में कमी आती है, साधन में कमी आती है तो साधन होता नहीं है। शास्त्र में जगह जगह लिखा है पर विश्वास नहीं है, चेष्टा में कमी आती। हमें सोचना चाहिए कि जब भगवान मिलना करते हैं मिलने की रीति है तो अपने क्यों इससे वंचित रहे? बहुत सो ने लाभ उठाया, हम क्यों वंचित रहे? इस कारण संसार में दंभ ज्यादा फैल गया, सब जगह पोलम पोल है। सेठ जी लिख रहे, सब जगह पोलम पोल है, सच्चाई बहुत कम है, 100 साधुओं में 90 तो नापास है और जो 10 है उनमें भी बात ठीक ढंग से समझ में कम आती है। गृहस्थों में तो और ही ज्यादा कठिनाई है, उनके मन में तो ये जची है कि गृहस्थ का काम धंधा मुख्य है, परमात्मा की प्राप्ति तो हो न हो काम कैसे चलेगा। भगवान ने गीता में लिखा, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, यततम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। हजारों में कोई इधर लगते हैं। हमको ऐसा मालूम देता है कि गृहस्थ तो ये जानते ही नहीं है कि परमात्मा क्या है और उसकी साधना क्या है। वे तो सुबह से उठकर शाम तक सोते तक केवल इसी काम धंधे में लगे रहते हैं, उठेंगे तब से लेकर सोएंगे तब तक घर गृहस्थ के काम में लगे रहते हैं। गृहस्थ में भी दो प्रकार के गृहस्थ हैं, कुछ गृहस्थ शहरों में रहते हैं और कुछ गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं। शहर के लोग तो इतने चालाक होते हैं कि वो तो इधर बात सुनना ही नहीं चाहते, और देहात के लोग इतने भोले होते हैं कि उनके समझ में ही नहीं आती। शहर के लोग इतने चालाक होते हैं कि वो तो इस बात को फटकने ही नहीं देते, सुनना ही नहीं चाहते, उस बात मानते ही नहीं। देहात के लोग इतने भोले होते हैं कि वो बात समझते ही नहीं। दूसरी बात है कि नास्तिकता ज्यादा चालाक आदमियों के द्वारा फैलती है, जानते तो है नहीं, तर्क वितर्क करते रहते हैं, अपने को बुद्धिमान मानते हैं, इसलिए नास्तिकता फैलती है। भोले भाले आदमी समझते क्यों, हम तो भाई भोले भाले समझते नहीं, ये बड़े पढ़े लिखे समझदार है, वो ऐसा बोलते हैं तब तो ऐसा ही होगा। अरे इस मार्ग में आप चलोगे तो नास्तिकता समाप्त हो जाएगी, आस्तिकता आएगी। मनुष्य अपना ध्येय का निर्णय करके विचार करे, वो बुद्धि के द्वारा साधन नहीं करता, वो मन के द्वारा इंद्रियों के द्वारा साधन करता। अरे बुद्धि के द्वारा निश्चय तो करो, पहले बुद्धि के द्वारा निश्चय करो कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। मन के द्वारा मनन तो करेंगे पर बुद्धि के द्वारा निश्चय नहीं करेंगे। इसका कारण कि श्रद्धा की कमी। हम लोग मानते हैं कि सत्य बोलना ठीक है, ये बात विवेक से मान ली, परंतु व्यवहार में जब काम पड़ता है तो झूठ बोलने में स्वार्थ दिखता है, झूठ बोलने में कुछ अच्छा दिखता है, उस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि सत्य बोलने की श्रद्धा में कमी है। हमारी उन्नति में हमको 3 बात दिखती, एक तो आलस्य, एक विषयाशक्ति और एक अश्रद्धा। लेकिन तीनों में से किसी एक को बताया जाए तो अश्रद्धा बताएंगे, श्रद्धा हो तो सब दोष भाग जाए। लोगों में आत्मबल की बड़ी कमी आ गई, ध्यान देवें, आत्मबल की बड़ी कमी आ गई, आत्मा की कमजोरी आ गई। क्या कमजोरी आई? आप एक सिद्धांत मानते हैं, उसे आप भय लोभ काम और क्रोध के कारण से त्याग देते हैं तो ये आत्मबल की कमी है। कोई विपत्ति आ जाएगी तो उसके भय से आप अपना सिद्धांत छोड़ देंगे। धन आदि का लोभ सामने आएगा तो आप अपना सिद्धांत छोड़ देंगे, विषयों की इच्छा होगी तो सिद्धांत छोड़ देंगे, और क्रोध आएगा तो उसमें तो ये बात याद ही नहीं रहती। यहां आकर आप कमजोर पड़ जाते हो और आत्मबल कमजोर पड़ जाता है और भय लोभ काम क्रोध ये बढ़ जाते हैं। देखो हरिश्चंद्र पर कितनी विपत्ति आई। स्वप्न में एक ब्राह्मण को उन्होंने राज्य दिया था, स्वप्न में। जागृत अवस्था में उस ब्राह्मण ने कहा लाओ तुम्हारा राज्य हमको दो, तुमने दान में दे दिया था, इतना बड़ा वैभव सब दान में दे दिया, अयोध्या का राज्य। राजा रानी कितनी कितनी विपत्ति सहन करते रहे पर सत्य से नहीं डिगे। हरिश्चंद्र ने जाकर एक मेहतर के यहां नौकरी की मसाणों में। और वहां उसी का ही लड़का, उसकी लाश लेकर उसी की रानी आई। हरिश्चंद्र ने कहा कफन तो देना पड़ेगा। ऐसी विपत्ति में बिचारी कहां से कफन का कपड़ा देगी, देना ही पड़ेगा, साड़ी में से फाड़ा। हरिश्चंद्र ने साड़ी में से कपड़ा फाड़ा तो हरिश्चंद्र के ऊपर भगवान की कृपा हो गई, सत्य की ऐसी मिसाल देखने को नहीं मिली। धन्य है हरिश्चंद्र जिसने किसी भी विपत्ति में भय के कारण से धर्म का त्याग नहीं किया, सत्य का त्याग किया, सत्य का त्याग नहीं किया। अपने आराम का त्याग कर दिया, स्त्री पुत्र का त्याग कर दिया, अपने आप को बेच दिया और भीतर में आत्मबल को नहीं खोया। ये कितनी ऊंची बात है, ये अपने लोगों को समझना चाहिए। अरे हम पर कोई हरिश्चंद्र जैसी विपत्ति तो आई नहीं है, छोटी मोटी विपत्ति आती है उसके लिए हम लोग डिग जाते हैं। ये अज्ञता है, बेसमझी है, जिससे परमात्मा को नहीं जानता, स्वयं को भी नहीं जानता और संसार को भी नहीं जानता। थोड़ी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाओ। बुद्धि भोटी हो गई, संसारी संसार की तरफ लगने से बुद्धि भोटी हो गई। इसको भजन साधन से, सत्संग से तीखी बनाओ। अध्यात्म विषय को समझने में बुद्धि को कुशाग्र बनाओ। इसी कारण से सुनी हुई बात धारण नहीं हो रही है। हमने मान लिया कोई बात अच्छी है लेकिन लोभ से, भय से, काम से वो उस बात को तो हमने दबा दिया। ये आत्मा की कमजोरी नहीं तो क्या है? एक आदमी का दूसरे पर असर पड़ता है, अपने प्रभाव के कारण, दया के कारण या नरमाई के कारण असर पड़े तो अच्छा है, किंतु लाठी जोर के प्रभाव से दूसरे पर असर पड़े और वह गुण दब जाए, ये क्या, ये कायरता है। महाभारत में शिशुपाल ने पितामह भीष्म पर, भगवान कृष्ण पर कितना आक्षेप किया। भगवान की ये लीला हुई, दुनिया को भगवान ने ये बताया कि अरे निंदा से क्यों डरो, मेरी भी तो निंदा हुई, भरी सभा में निंदा हुई। शिशुपाल ने मेरी भरी सभा, मेरे ही वंश में मेरा ही संबंधी होकर और संसार के सब मेरे प्रेमी लोगों के बीच में इसने हमारी निंदा की, हमने भी तो सहा है, आप भी सहो। पितामह भीष्म को कितना भला बुरा कहा, उन्होंने भी सहा। भीमसेन में विवेक और विनय नहीं था, बड़ा क्रोध आता था, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए भीमसेन का कोई विशेष गुणों में नाम नहीं लिया जाता वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। युधिष्ठिर क्षमा के स्वरूप थे। द्रौपदी के चीरहरण के समय भीम के रोम कूपों से आग की चिंगारियां उठने लगी, यूं कर रहा था वो, और बाड़ों में से चिड़ 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 ऐसे आग निकल रही थी, जैसे कोयला होता है कोयला में चिड़ 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 ऐसे। तो पास में युधिष्ठिर महाराज बैठे, क्या करता है भीमसेन, क्या करता है? तो भीमसेन ने कहा, और तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, कम से कम मेरे क्रोध को यहां तो मुसलने दो, मेरे को क्रोध तो इतना आता है कि उठा करके सब इनको अकेला मार दूं मैं, पर आपके डर से इतना तो कम से कम करने दो ताकि ये क्रोध थोड़ा फूट जाए तो ठीक है। तो भीमसेन में विवेक और विनय नहीं था, क्रोध बहुत था। तो भीमसेन का इस विषय में कोई नाम नहीं लेते। युधिष्ठिर जी महाराज चुप थे। युधिष्ठिर जी में कायरता नहीं थी, वीरता थी, धीरता थी, गंभीरता थी, धार्मिकता थी। इसलिए लोभ से कि भय से कामना से किसी से भी अपने आत्मबल को कमजोर नहीं बनाना चाहिए।